necessariamente. أعرف بالله على الشيخ حكيم محمد أختار صاحب رحمة الله تعالى عليه نے پورا سلوک گویا جمع کر دیا اس کو سلوک کہتے ہیں تصوف کہتے ہیں تزکیہ و احسان کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ خاص طور پر گجرات کے علماء اتنی خالص اردو نہیں سمجھتے ہیں تو اشعار سن کر گزر جاتے ہیں اس میں جو حقیقتیں پنہاں ہیں واقعی وہ میرا دل عجیب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ الہامی اشعار عطا فرمائے ایک ایک شعر میں پورا پورا ایک مضمون سمو دیا ہے اور الہامی اشعار ہے تو کوئی عام شاعری کا انداز نہیں ہے ان میں چند اشعار ہر شعر کی شرح تو مشکل بھی ہے پہلا شعر ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا تیری راہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے کہ اللہ ہم آپ کے راستے سے کیسے گزر سکتے ہیں کیونکہ ہم سب جیسے سالک ہیں سالک کے معنی چلنے والا ہے ہم چل کر کہیں جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں کوئی آدمی یہاں سے چلتا ہے تو کوئی اگلے شہر میں جائے گا کوئی دوسرے شہر میں جائے گا تو کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا جس کو کہتے ہیں میں سالک اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا اور پانا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس طرح پا سکتے ہیں کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور کیسے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں اللہ کو اپنے دھیان میں رکھیں دیکھیے جس چیز کی انسان کثرت کرتا ہے پھر وہی چیز دل دماغ میں چھا جاتی ہے بہت سے لوگوں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر وقت اسی کا تصور اسی کا خیال اسی کی باتیں کوئی تاجر اگر ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت ذہن میں تجارت ہی کی سوچتی ہے کس طرح کرنا ہے کیسے کام کریں کس کو میں بات کروں کس سے ملوں کہاں جاؤں کیا کروں اسی لائن کی ساری چیزیں وہ سوچتا ہے ہر وقت دماغ جو ہے وہ اسی میں مصروف ہے تاجر اپنی تجارت کے معاملے میں وہ نہ معلوم کتنے لوگوں سے ملنے کو سوچتا ہے اور تجارت کی کامیابی کا تصور کرتا ہے ہم لوگ الحمدللہ سالک ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں ہمیں وہیں پہنچنا ہے کیسے پہنچیں گے حضرت فرماتے ہیں اسی طرح سے ممکن تیرے راہ سے گزرنا تیرے راستے سے ہم کس طرح گزر سکتے ہیں دوسرا مصرع ہے اس میں دو مضمون آگے بڑھے کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا سب کچھ اس میں آ گیا حضرت والا شاہ بہت اکثر فرماتے ہیں دو قسم کے حالات ہوتے ہیں کبھی طبیعت کے موافق کبھی طبیعت کے مخالف ناموافق جب موافق ہو طبیعت کے کوئی بھی حال ہو اس پر اللہ کا شکر کرنا انسان کو کوئی جوان ہوا شادی کرنی تھی اچھا رشتہ مل گیا یہ موافق حال ہو گیا اولاد کی ضرورت تھی اولاد کے لیے دعا کر رہا تھا اللہ نے اولاد عطا فرما دی یہ موافق حال ہو گیا اس پر کیا کرے گا شکر کرے گا اللہ کا کہ اللہ آپ کا شکر ہے رشتہ لگ گیا آپ کا شکر ہے نکاح ہو گیا آپ کا شکر ہے بیوی نیک مل گئی طبیعت اور مزاج کے موافق مل گئی شکر ہی تو کرے گا نا یہاں بھی روئے گا شکر کرے گا یہ راستہ شکر کا ہے تو موافق مل گئی اور خدا نہ خواستہ کوئی اس کے خلاف کوئی بات ہوئی تو پھر آدمی کے لیے کیا راہ بنتی ہے صبر کرنا اب راستہ بھائی ہونا تھا ہو چکا اب اس پر صبر کرو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی بہت کچھ سوچتا ہے استخارہ بھی کیا مشورہ بھی کیا سب کچھ ہوا ہر طرح سے جانچا موافقت نہیں ہو رہی مزاج کی طبیعت کا اختلاف پھر اس وقت انسان کو مرزا مدرے جانے جانا بننا چاہیے یعنی کہ انڈین کی طرح بس تو چل میں آئی اور میں چلا تو آئی اور جلدی سے طلاق دے دی ये बेसब्री की अलामत है। इंसान जब दुनियावी हालात सोचता है तो फिर बस जल्दी से कहता है इसको तलाक दे दो, हालांकि तलाक रास्ता नहीं है। अगर मिजाज मुआफिक नहीं हुआ तो फिर सब्र करना भी एक चीज़ है। कैसा कैसा लोगों ने सब्र किया, बाकायदा किताब किताब छपी इस पर। सब्र वाले ज़ौजात रही मराको गया तो वहाँ उसके जो मुसन्निफ़ हैं यूसुफ अजबकी या क्या नाम था उसका, तो वही मुसन्निफ़ आए मेरे पास, उन्होंने वो किताब मुझे हदिया दी। सब वाले ज़ौजात ऐसे ऐसे वाकयात लिखे हैं, और वो आम लोगों के नहीं, उलमा के, बुजुर्गों के, कि उन्होंने बीवी मुआफिक नहीं हुई किस तरह उस पर सब्र किया लेकिन तलाक नहीं दी। आज हमारी ये बीमारी बन गई है, बस जहाँ तबीयत के खिलाफ कोई बात हुई बस तलाक, और फिर उसके बाद खुद भी परेशान है, वो भी परेशान है, दूसरा निकाह हो नहीं रहा है, महीनों नहीं बरसों गुजर जाते हैं, फिर कोई आती है तो वो कौन सी मुआफिक आएगी, ये कोई गारंटी है? हो सकता है दूसरी भी ऐसी आए, फिर क्या करोगे? इंसान फिर इस तरीके पर ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। ये एक मिसाल दी है, चलो बाद में बात आ गई, कोई इरादा भी नहीं था ये मिसाल सामने आए लेकिन आ गई। दो ही रास्ते हैं, अगर मुआफिक हालात हो शुक्र करें, ना मुआफिक हो सब्र करें, दोनों रास्ते जन्नत में इंसान को ले जाते हैं। सब्र पर तो अल्लाह ताला ने अपनी मैयत का वादा फरमाया, इंशाअल्लाह मासूमीन। इतनी बड़ी बात है, तबीयत के खिलाफ जो हालात आ रहे हैं उसी पर तो इंसान सब्र करेगा, मुआफिक हालात पर सब्र का तसव्वुर नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। ये हजरत का शेर जो है बड़ा अजीब है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ हजरत का ये शेर इलामी शेर है, एक मिसरे में दो अहम मजमून पूरे अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गए, कभी दिल पे सब्र करना, कभी दिल से शुक्र करना। जब तबीयत खुश हो जाए मुआफिक हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दिल से शुक्र अदा करें। शुक्र पर नेमतों का वादा है, नहीं शुक्र तुम राजी दन न हो, बार बार शुक्र का फ़ायदा बताया गया है। अल्लाह और अता फरमा, तकलीफ़ या मुसीबत आए, तबीयत के खिलाफ कोई बात आए तो उस पर सब्र करें। इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, अल्लाह आपका रास्ता जो तय होगा वो इसी तरह तय होगा। कभी ना मुआफिक हालात आएंगे तो सब्र करेंगे, कभी मुआफिक हाल आएगा तो हम शुक्र अदा करेंगे। फिर आगे उससे अगला मकाम, ये तेरी रजा में जीना, ये तेरी रजा में मरना, मेरी अब्दियत पे या रब ये है तेरा फौज करना। इसको कहते हैं रजा बिल कज़ा। इंसान जिए भी अल्लाह की रजा में, मरे भी अल्लाह की रजा में, जब तक अल्लाह आप चाहें हमें ज़िंदा रखें, जब चाहें हमें मौत अता फरमाएं, हम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे। इसको कहते हैं फना। फना की सिफत इंसान में हासिल करना, अपने आप को फना कर देना, अल्लाह की मर्ज़ी पर अपने आप को क़ुरबान कर देना, इसी का नाम है रजा बिल क़ज़ा। और फना है नफ्स, नफ्स फना हो गया, खुद कुछ नहीं है, जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह करेंगे वही करेंगे, जो अल्लाह चाहेंगे वही करेंगे। ये दूसरे शेर का हासिल, ये तेरी रजा में जीना, ये तेरी रजा में मरना, जिएंगे तो आपकी रजा में, मरेंगे तो आपकी रजा में, बस यही मेरी बंदगी है, इसी बंदगी पर आप फौल फरमा, यानी आखिर तक मेरा ये हाल बाकी रहे। यही आशिकों का शेवा, यही आशिकों के जो अल्लाह ताला के आशिक हैं, अल्लाह ताला से जो मोहब्बत का दम भरते हैं, उनका यही तरीक़ा है, शेवा के माने तरीक़ा, यही तरीक़ा है, यही उनकी आदत है। कभी गिर या वो बुका है, कभी अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, तन्हाई में रो रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, कभी आए सर्द भरना, रोना नहीं आ रही, वाह अल्लाह और आह कर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत को गोया किसी तरह किसी भी अंदाज से याद करना बहुत बड़ी बात है। हमने एक बुजुर्ग को देखा हजरत शेख हजरत मौलाना ज़करिया साहब के खलीफा हैं हजरत मौलाना मोहम्मद गार्डी साउथ अफ्रीका में उनका उनको जिक्र करते हुए देखा। मैंने कहा वाकई जिक्र इसका नाम है कभी आपने नहीं देखा होगा। मैंने देखा मगरब के बाद नकद भाई मजाक देखा मगरब वो जिक्र करते ये जिक्र जो दवाज़ा तस्बीह इस कदर रोते हैं वो जिक्र करते हुए। मैंने कहा अल्लाह अकबर ये है दिल से जिक्र करना अल्लाह को याद करना आँखों से आंसू जारी हैं और रो रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं रो रहे हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं। पता चल रहा है कितनी आह और कितना सीने में दर्द भरा हुआ है होती है मोहब्बत बाल लोगों को ताल्लुक होता है तो जिक्र इसका नाम है। हम तो बाल अभी कर रहे हैं जिक्र सीख रहे हैं गोया रस्मी जिक्र है भाई कर लिया 100 आदत कर लिए 200 आदत कर लिए बात कहते इसका भी वक्त नहीं मिलता है किसी को बता दे भाई 2 तस्बीह कर लो अल्लाह अल्लाह के टाइम ही नहीं मिलता है। उस बेचारे को 200 आदत में 2 मिनट लगती 3 मिनट उसका भी वक्त नहीं मिलता है पता नहीं कहाँ हो जाता है उसका। ये गफलत की बात है अल्लाह ये आदत छुड़ा दे और जो अल्लाह का रास्ता तय कर रहे हैं उन्हें अल्लाह को याद करने के लिए कम से कम 10 मिनट 20 मिनट बैठ कर फारिग होकर। कोई कहता है मैं ड्राइविंग करते हुए कर सकता हूँ जिक्र कर सकते हो कौन ना कहता है कोई पूछता है तो ये कहते हैं भाई करो लेकिन करने का तरीका क्या है कि आदमी थोड़ा वक्त फारिग करे 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाए चाय दानू होकर क़िबला रुख होकर और तमाम चीज़ों का ख्याल दिल दिमाग से निकाल कर फिर उसके बाद जिक्र करे देखो उसकी क्या लज्जत होती है और फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे पैदा होती है और फिर अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत पर कैसे गालिब आती है। इंशाल्लाह उसके असरात होंगे अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यही आशिकों का सेवा यही आशिकों की आदत कभी गई हो बुका है कभी आए सख्त बनना बस 3 अशार की शरह काफ़ी है। इस वक्त इसी पर इतफा करते हैं अल्लाह ताला हमें अशार को कमा को सुनने समझने उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।